वाणी प्रचारिण निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यधारिण श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जैन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वप्रदान्तिकम् वैराग युग भक्तिर संप्रयत्नै अपायन मामनुभीष्मन्धम् कृपां बुधिर्यः पर दुख दुखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि। वन्दे अनन्ताद्भुते ईश्वरजं श्रीचैतन्य महाप्रभुं नीचोऽयपि यत्प्रसादात् स्याद् भक्तिशास्त्र प्रवर्तकः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
ठीक है, ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। आज हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु से श्रीपाद रूप गोस्वामी के तीसरे मिलन की कथा सुनेंगे। यद्यपि कथा प्रसंग बहुत ज्यादा है लेकिन संक्षेप में पूरा करने का कोशिश किया जाएगा। यद्यपि इस प्रसंग में ऐसे अद्भुत श्लोक है जो गौड़ीय वैष्णव का जीवन स्वरूप है। एक एक श्लोक अत्यंत विचारणीय है। विदग्ध माधव ललित माधव के श्लोक आएंगे जिनका स्वागत स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु उनके अंतरंग परिकर स्वरूप दामोदर और राय रामानंद जैसे लोग किया करते थे। श्री चैतन्य महापुरुष स्वयं श्रीमती राधा रानी के भाव में और स्वरूप दामोदर ललिता और राय रामानंद विशाखा ऐसे अंतरंग सखियों के बीच में राधा रानी जो कृष्ण विरह का अनुभूति करती थी वही अनुभूति महाप्रभु गंभीरा में पूरी के अपने निवास स्थान में किया करते थे और इनके इस अभीष्ट को रूप गोस्वामी समझ रहे हैं और उसके अनुरूप ग्रंथ लिख रहे हैं। तो तीसरे मिलन में रूप गोस्वामी के साथ महाप्रभु का व्यवहार देखिए। महाप्रभु उनको प्रयाग से वृंदावन भेजते समय कहे थे ठीक है वृंदावन के निकट आ गए हो अब मेरे साथ मत लौट तो वृंदावन जाओ और फिर कभी आकर पुरी में मिल लेना। रूप गोस्वामी वृंदावन गए लेकिन उनका मन नहीं लगा, यद्यपि उनके साथ उनका छोटा भाई अनुपम भी था। 2 महीना ब्रज 84 कोस के विभिन्न तीर्थों का भ्रमण किए और फिर पुरी के लिए प्रस्थान कर गए। और संयोग की बात, सनातन गोस्वामी महाप्रभु से काशी में मिले इनसे पीछे, और महाप्रभु की आज्ञा से राजपथ से वृंदावन की ओर चले गए और रूप गोस्वामी दूसरे मार्ग से पुरी की ओर आ गए। वृंदावन जाने पर सनातन गोस्वामी से रूप गोस्वामी का मुलाकात नहीं हो पाया, ये वृंदावन घूमकर पुरी की ओर आ गए। तो महाप्रभु के आज्ञा से वृंदावन आए और वृंदावन आने के बाद लीला स्थलियों के दर्शन करके इनके मन में राधा कृष्ण के निभृत निकुंज के लीलाओं का स्मरण आने लगा महाप्रभु की कृपा से, और ये लिखने लगे। कृष्ण लीला को नाटक के रूप में प्रस्तुत किए, यद्यपि व्यवस्थित ग्रंथ नहीं लिख पाए, अपने डायरी में जहां तहां जो भाव आया उसको लिखते थे। तो बंगला में डायरी को कर्चा कहते हैं, तो अपने कर्चा में लिखते रहे। तो मंगलाचरण के कुछ श्लोक, कुछ नांदी श्लोक लिख लिए और लिख करके मन बनाए कि चलो महाप्रभु के साथ मिलते हैं पुरी में जाकर। तो पुरी के रास्ते में चले आए दोनों भाई, छोटे भाई अनुपम और रूप। तो यहां से प्रारंभ करते हैं। ये था प्रभु आज्ञा रूप आई लो वृंदावन, कृष्ण लीला नाटक करीते है लमन। वृंदावन नाटक आरंभ करीला, मंगला चरण नांदी श्लोक तथा ही लिखिला। वृंदावन में ही कुछ मुख्य भूमिका लिख लिए। नांदी श्लोक कहते हैं भूमिका को, जो भूमिका का श्लोक है जिसमें सारांश रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अच्छा वक्तव्य अच्छा ग्रंथ का स्वरूप है कि प्रारंभ में अपने इष्ट अपने गुरु को प्रणाम किया जाता है, और इसके बाद दूसरा विधा है कि जो बातें कहनी है उसको संक्षेप में कहा जाता है, और तीसरा ऑडियंस को श्रोताओं को या पढ़ने वाले पाठकों को आशीर्वाद दिया जाता है। अपने तरफ से आशीर्वाद है श्री भगवान के तरफ से। मंगला चरण है यह त्रिविध प्रकार, वस्तु निर्देश नमस्कार आशीर्वाद, ये है 3 विधा। तो उसी क्रम में अच्छे वक्तव्य का यही स्वरूप है, संक्षेप में बातें कही जाती है। तो इसको लिख लिए डायरी में और रास्ते में चल रहे हैं। पथे चली आई से नाटके घटना भावीते, एकदम उसी कॉन्शियसनेस में है। करचा करिया किसु लागी ला लिखीते, मन में वही बातें गूंज रही है। जब कहीं अवसर मिलता कुछ नोट कर लेते हैं। यही मते दुई भाई गौड़ देश आईला, तो दोनों दो स्तर के हैं, सहोदर भाई तो है, एक भाई गृहस्थ है छोटे भाई और बड़ा भाई विरक्त है। अनुपम गृहस्थ है, उन्हीं के पुत्र थे जीव गोस्वामी। तो इनकी इच्छा हुई कि चलो भैया घर से घूम कर आएंगे महाप्रभु के पास। तो घर तो बंगाल में है, महाप्रभु उड़ीसा में है, चलो सीधे चले गए गौड़ देश। गौड़ देश आने के बाद भगवान की विचित्र लीला, अनुपम कुछ दिन ही रहे और उनका शरीर पूरा हो गया। साथ में गए वृंदावन से बंगाल, और बंगाल में जाने के बाद गौड़े आशी अनुपमे गंगा प्राप्ति हैला। तो इसके कारण उनको वहां रुकना पड़ा। रूप गोस्वामी के मन में उत्कंठा थी रूप महाप्रभु से मिलने की, लेकिन अनुपम के कारण उनको रुकना पड़ा। रूप गोस्वामी प्रभु पासे करिला गमन, लेकिन प्रभु र देखिते तारे उत्कंठित मन। मन तो था कि महाप्रभु के पास जाए, लेकिन भाई के कहने से गांव चले गए और उधर देखिए संयोग की बात कि वहां जाने के बाद अनुपम की मृत्यु हो गई। कितना विचित्र घटना है। तो अनुपमेर लागी तार किछु विलंब हैला, भक्त पास आईला लाग ना पाईला, नहीं आ पाए समय से, तो फिर उनकी अंत्येष्टि आदि करना पड़ा इनको वहां रुक कर। छोटा सा बच्चा 6-6.5 वर्ष का जीव गोस्वामी थे उस समय, उनकी माँ इकलौता लड़का जीव। अब कुछ दिन रहकर उनकी अंत्येष्टि आदि तो करना पड़ा, इसके बाद पुरी के लिए प्रस्थान किए। तो पुरी के प्रस्थान में देखिए, मैं लगभग 225 श्लोक है अभी जो कहना है 1.5 घंटा में, तो मैं कुछ को तो पढ़ूंगा, कुछ को सारांश रूप में कहूंगा। एक एक प्याज पढ़ने का समय नहीं है, लगभग 3-3.5 घंटा होता तो एक एक पढ़ लेते, लेकिन आधा है। तो उड़ीसा चलते समय एक रास्ते में गांव पड़ा सत्यभामापुर, तो उस गांव में उनको रात्रि विश्राम करना पड़ा। तो रात में जब सोए तो रात्रि स्वप्न देखे एक दिव्य रूपा नारी, सन्मुखी आसी आज्ञा दिला बहु कृपा करी। एक बहुत सुंदर स्त्री स्वप्न में आती है और आकर कहती है, आमार नाटक पृथक करह रचन, आमार कृपाते नाटक हईवे विलक्षण। हमारा नाटक अलग दिखना, एक में मत लिखना, और हमारी कृपा से तुम्हारा ये नाटक अद्वितीय होगा। स्वप्न देखी रूप गोसाई करीला विचार, सत्य भामार आज्ञा पृथक नाटक करीवार। सत्य भामा जी कह रही हैं कि हमारा नाटक अलग लिखना, मतलब ब्रज लीला और पूर लीला, द्वारिकापुरी की लीला एक में मत समेट देना। गोपियों में और महिषियों में अंतर है, द्वारिका के लीला अलग और ब्रज का लीला अलग। तो मन में सोचने लगे, अच्छा मैं तो एक में ही लिखना चाहता था संपूर्ण कृष्ण लीला। तो भावीते भावीते शीघ्र आईला नीलाचल, इसी बात में आए और आकर के हरिदास जी के मूड में, पूरी मंदिर में नहीं जाना है क्योंकि हम मुस्लिम की नौकरी कर चुके हैं, गाय के मांस खा चुके हैं, तो हरिदास जी के स्थान पर आए। तो हरिदास ठाकुर तारे बहु कृपा कैला, तुम्ही आशीवे मोर प्रभु जे कहिला। हरिदास जी कहते हैं रूप बहुत अच्छा किया, महाप्रभु अभी चर्चा कर रहे थे कि रूप आने वाला है, चलो महाप्रभु आएंगे। दोपहर में आते हैं समुद्र स्नान के लिए, अवश्य आएंगे। तब तक ऐसी चर्चा हो रही थी, महाप्रभु अचानक आ गए, जे उन कुछ पहले आ गए रोज से। उनके मन में उत्कंठा है रूप को दर्शन करने को, सर्वज्ञ प्रभु सब जानते थे। अचंभित देखी रूप दंडवत करे प्रणाम किए, तो हरिदास जी कहते हैं रूप प्रणाम कर रहा है। अच्छा, हरिदास से मिली प्रभु रूपे आलिंगिला। फिर हरिदास को मिलने के बाद रूप गोस्वामी को उठाकर आलिंगन कर लिए। इसके बाद एकांत स्थान में दोनों को बुलाए और समाचार पूछने लगे, कुशल वार्ता इष्ट पुष्टि कैलक कत छड़े, कैसे बीता वृंदावन, अच्छा लगा। और तो हाँ प्रभु सब ठीक लगा। अच्छा सनातन का क्या हाल है, मिला? तो सनातन बर्ता जब ये गोसाई पूछी ल रूप कहे तार संगे देखा ना आईला, नहीं भेंट हो पाया। तो मैं गंगा पद से आ गया और राजपद से गए, वो हाईवे पकड़ लिए थे, मैं गंगा के रास्ते से आ गया। आमी गंगा पथे आईलाम तेहो राजपथे, अतएव आमार देखा ना नहीं लतार साथ। तो फिर अनुपम, सर्वज्ञ प्रभु सब जानते हैं, कहते हैं प्रयागे सुनिलो तेहो गेला वृंदावन, प्रयाग में आया तो सुना लेकिन अनुपम के साथ मैं घर चला गया। और तो गृहस्थ हो सकता है घर में रुक गया होगा, महाप्रभु ज्यादा नहीं पूछ पाए। तो अनुपमेर गंगा प्राप्ति कैला निवेदन, प्रभु अनुपम की गंगा प्राप्ति हो गई, शरीर छोड़ दिया। अच्छा तो महाप्रभु का ठीक है, बाद में मिलेंगे, आपको रहने की व्यवस्था कराते हैं। समुद्र स्नान करने गए और इसके बाद रूप गोस्वामी के लिए अपने सेवकों से कहकर उचित स्थान हरिदास जी के निकट ही दिलवाए। इसके बाद दूसरे दिन महाप्रभु आए कुछ भक्तों को लेकर। कुछ भक्तों में विशिष्ट भक्त है अद्वैत नित्यानंद, तुम्हारे दुई जने प्रभु कहे रूपे कृपा करो काय मने। महाप्रभु कहते हैं अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु आदि सब आए थे रथ यात्रा के लिए, तो कहे कि ए रूप पर विशेष कृपा कीजिए। तुमार दुहार कृपा ते यार होवे तैसे शक्ति, जाते विवरिते पारेन कृष्ण रस भक्ति। आप लोग इन पर कृपा कीजिए। अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं आप लोगों की कृपा से यह कृष्ण रस की गंगा बहाए। सुंदर ग्रंथ लिखे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं केवल अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु की नहीं, जितने गौड़िया उड़िया जत प्रभु र भक्तगण सबार हैला रूप स्नेह र भाजन। ये भाषा का प्रयोग कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्थानगत भाषा का प्रयोग करते हैं। कभी कभी ये बुरा लगता है उड़िया गौड़िया बिहारी बंगाली, लेकिन साफ शब्द करें जितने बंगाल के लिए शब्द है गौड़िया और उड़ीसा वाले उड़िया। गौड़िया उड़िया जत प्रभुर भक्तगण, जितने बंगाल के और उड़ीसा के भक्तगण थे सबके स्नेह भाजन हुए रूप। प्रतिदिन महाप्रभु मिलने आते थे, कुछ देर बैठते थे, इष्ट गोष्ठी करते थे, बड़ा अच्छा व्यवहार था। स्पेशल जगन्नाथ जी का प्रसाद इनको भिजवाते थे और उसी समय रथ यात्रा आ गया। गुंडीचा मंदिर मार्जन आदि किए, उसमें भी रूप को बुलाए। फिर टोटा गोपीनाथ में कभी कभी बैठते थे, सत्संग होता था, भक्तों के साथ महाप्रभु प्रसाद खाते थे, कभी कभी स्वयं प्रसाद वितरण करते थे। उसको देख कर हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी एकदम चकित थे महाप्रभु का व्यवहार। और ये लोग उस पंगत में नहीं बैठ पाते थे, क्यों क्या कारण था? अपने को बिल्कुल विनम्र दीनहीन एकदम नीच मानते थे। हरिदास ठाकुर की भावना थी कि हम मुस्लिम परिवार में जन्मे हैं और रूप गोस्वामी की भावना थी कि हम मुस्लिम की नौकरी किए हैं नवाब हुसैन साहब, इसलिए दोनों देखते थे। लेकिन महाप्रभु इनके लिए गोविंद के द्वारा प्रसाद भिजवाते। गोविंद महाप्रभु के गुरु भाई थे ईश्वरपुरी जी के शिष्य, और अपने अंतिम काल में ईश्वरपुरी जी की जब सेवा कर रहे थे तो उन छोटे वंश में इनका जन्म हुआ था, शूद्र वंश में। तो कहे कि बेटा मैं तुमको क्या आशीर्वाद दूं, मेरे पास तो कुछ ऐसा नहीं लगता जो देकर मैं तुम्हारी सेवा से उड़ीण हूं, लेकिन मैं तुमको एक पत्र लिखता हूं जीवन के अंत में छोटा सा, और ये लेकर पुरी में चला जाना, मेरा शिष्य कृष्ण चैतन्य स्वामी है। यद्यपि वो भारती से दीक्षा लिए हैं लेकिन मेरा प्रथम शिष्य है, मैंने पहले उनको नाम दिया था। तो एक पत्र देकर भेज दिए पुरी, और पुरी में आकर वो पत्र दिए तो उसमें स्पेशल आज्ञा आई थी इसको अपने पर्सनल सेवा में लगा लेना। तो वहां एक से एक उत्कृष्ट ब्राह्मण, एक से एक उद्भट विद्वान जो महाप्रभु के साथ अंतरंग रहना चाहते थे, लेकिन उसी गोविंद को ही अवसर मिला। महाप्रभु कहे कि आप मेरे गुरु भाई हैं लेकिन आपको अपने सेवा में लगाना ये उचित नहीं है, फिर भी गुरु आज्ञा परियसी। तो सेवा में स्वीकार कर लिए, जो उनके प्रसाद पवाते, कपड़ा धोते, चरण सम्मान करते, एकदम पर्सनल निजी सेवक गोविंद। तो उसी गोविंद से प्रसाद भेजते थे रूप गोस्वामी के लिए। एक दिन महाप्रभु आए अचानक हरदास जी के पास और कहे रूप कृष्ण बाहिर नहीं करी हो ब्रज है ते, कृष्ण को ब्रज से बाहर मत भेजना, ब्रज छाड़ी कृष्ण कभू ना जान कहाँ थे, ब्रज छोड़कर कृष्ण कभी बाहर नहीं जाते। कृष्णोन्यो यदु संभूतो यह कृपूर्ण सोस त्यतः परह वृंदावनम परित्यज सक्वचिन नैव गच्छति। हरिदास जी नहीं समझ रहे क्या बोलने लगे महाप्रभु, लेकिन रूप गोस्वामी समझ गए। ये तक ही महाप्रभु मध्यान चलिए बुझौल बुझाने जैसा बोलकर चले गए। रूप गोस्वामी मने किछु विस्मय हैला, सोच रहे हैं कि देखो पृथक नाटक करते सत्य भामा आज्ञा दिला, उधर द्वारिका के तरफ से भी आ गया कि नहीं देना, यहाँ राधा के मूड में बोल रहे हैं कि अलग मत करना, दोनों का पैरवी है नाटक के लिए। पृथक नाटक करते सत्यभामा आज्ञा दिला, जाने लू पृथक नाटक करते प्रभु आज्ञा है। तो मैं तो सोच रहा था कि दोनों एक साथ करो, पूर्वे दुई नाटक छिला एकत्र रचना, पहले तो मेरे दिमाग में था कि एक साथ लिख दूं, लेकिन अब तो दो भाग करना ही पड़ेगा। तो चलो नांदी मुखी और प्रस्तावना सबको अलग करना पड़ेगा, मैं एक ही में लिख दिया था, लेकिन पृथक करिया लिखी करिया भावना पूरी में। इनका काम यही था, चिंतन करते थे कुछ लिखते थे। लेकिन रथ यात्रा के समय एक श्लोक चैतन्य चरितामृत में 3 बार आया है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। और मध्य लीला के प्रथम परिच्छेद में और मध्य लीला के 13वें परिच्छेद में और अंत लीला के प्रथम परिच्छेद में, तो अपने आप में वो एक विषय है, लेकिन संयोग बस आज इसको नहीं कह पाऊंगा, संक्षेप में कहता हूँ। महाप्रभु जगन्नाथ के रथ यात्रा में जगन्नाथ जी का दर्शन करते करते अचानक एक साहित्य का श्लोक बोलने लगे। एक नायिका अपने प्रियतम से नायक से कहती है, और बाणभट्ट का पद है, श्लोक है, और उसको महाप्रभु बोल रहे हैं। जितने संस्कृत के उद्भट विद्वान हैं सब समझ रहे हैं कि श्लोक के कहां का है, लेकिन बोल क्यों रहे हैं कोई नहीं समझ रहा था। महाप्रभु एक नायिका की बात को जगन्नाथ के सामने बोल रहे हैं, और उस रथ यात्रा में रूप गोस्वामी भी भाग लिए थे। रथ यात्रा में तो सब लोग आ सकते हैं, मंदिर में नहीं है। तो रूप गोस्वामी सुन लिए, तो रूप गोस्वामी उनके भाव को समझकर दूसरे कागज पर उसको लिखे एक श्लोक उस भाव में। श्लोक क्या था? यह कौमार हर स एव बरसता एव चैत्र सपा ते चोन्मीलित मालती सुर भय प्रौढ़ा कदम्बा नीला सा चैवास्मि तथापि तत्र सूरत व्यापार लीला विधौ रेवा रोदसि बेतसि तरुतले चेतः समुत्कंठते। एक नायिका कह रही है, हे प्रियतम, आप वही हो जो हमारी जीवा को, हमारी प्रथम जवानी को आपने उपभोग किया, वही हमारे प्रियतम आप हैं। जब हम लोग रेवा नदी के तट पर बेतसी वृक्ष के नीचे एकांत में मिलते थे, वही आप हमारे प्रियतम और वही आप आपकी हम प्रिया। ते चोन्मीलित मालती सुरभया, उस समय हम लोग मिलते थे वो चांदनी रात्रि मालती की सुगंधित पुष्प प्रौढ़ा कदम बानीला, उस कदम के वृक्षों के यहां हम लोग मिलते थे, और आज संयोग से वही साचैवास्मि तथापि तत्र, वैसा ही वही बसंत की रात्रि है, वही पूर्णिमा है, उसी तरह के चांदनी रात है, वैसा ही वही प्रियतम आप हैं, वही आपकी प्रिया मैं हूं, लेकिन आपको देखकर मुझको सुख नहीं मिल रहा है। मेरा मन रेवा रोदसी बेतसी तरुतले, मेरा मन उसी रेवा नदी के तट पर बेतसी वृक्ष के नीचे जा रहा है, मैं देख रही हूं आपको, लेकिन याद हो रहा है वही रेवा नदी के तट पर जब हम लोग प्रथम बार मिले थे, वह याद आ रहा है। आप को देखकर मुझको सुख नहीं मिल रहा है, मैं वही प्रेमिका हूं, फिर भी मेरा मन यहाँ प्रसन्न नहीं है। मैं रेवा के तट पर बेतसी वृक्ष के नीचे उस स्थान पर लौटने के लिए उत्सुक, मेरी इच्छा है कि हम लोग वहां मिलते। तो सब लोग एकदम चकित हैं कि इस नायिका की बात महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने क्यों बोले। दिन भर बोले रथ यात्रा में, एक बार नहीं, दिन भर, कोई बाकी नहीं था जो सुनाना। तो जोर जोर से बोलते थे, रोने लगते थे, एकदम विभोर हो जाते थे। तो रूप गोस्वामी एक श्लोक लिखे अपने आश्रम पर जाकर कुटिया में, शिखरणी में, बड़ा सुंदर छंद में लिखते हैं। प्रियः सोऽयं कृष्णः सहचरी कुरुक्षेत्र मिलिता तथाहं साराधा तदिदमुभयो संगम सुखम् तथाप्यन्तः खेलन् मधुर मुरली पंचम जुषे मनो में कालिंदी पुलिन विपिनायैष प्रियते। हे प्रियतम, आप मेरे वही प्रियतम श्री कृष्ण हैं और मैं आपकी वही प्रिया श्री राधा हूं, लेकिन इस कुरुक्षेत्र में जो आप मुझसे मिले हैं मुझको अच्छा नहीं लग रहा है। यह जैकेट पॉकेट मुकुट और मोजा जूता बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे तो वही वृंदावन के कालिंदी के तट पर निवृत निकुंज में गोपाल वेश में बंसी लेकर जो पंचम स्वर में बजाते थे वही रूप मुझे याद आ रहा है। तथा व्यंत खेलन मधुर मुरली पंचम जिसे मनो में कालिंद पुलिन विपनाय स्त्री है। मेरा मन तो बार बार वृंदावन के उस जमुना के तट पर कालिंदी के तट पर उस निकुंज निभृत निकुंज में जा रहा है। मुझको आपका यह रूप अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ खूब ड्रेस पहने थे, मुकुट पहने थे, द्वारिकाधीश थे ना, जूता भी पहने थे, और वहां तो जूता चप्पल कुछ नहीं, एक धोती पहन लिए और उतरिए, सारा शरीर दिख रहा है, लाठी लिया है और बंसी बजा रहा है। तो गोपाल वेश मुझको याद आ रहा है, उस मधुर मुरली का पंचम स्वर सुनाई दे रहा है जिसको सुनकर हम लोग पागल की तरह दौड़ती थी। तो इसको ताल पत्र पर लिख कर हरिदास जी के कुटिया में ऐसे खोस दिए थे और रूप गोस्वामी स्नान करने गए थे। जब महाप्रभु आए तो रूप गोस्वामी नहीं थे, तो वहां आए और आकर के महाप्रभु अचानक उनकी दृष्टि उस पर चली गई। अरे सर्वज्ञ तो सब कुछ जानते थे, उसको निकाल लिए कागज पढ़ने लगे। स्वरूप दामोदर भी साथ थे, तो श्लोक पढ़कर प्रेमाविष्ट हो गए महाप्रभु। रूप गोस्वामी का कहने का मतलब है कि महाप्रभु का गुप्त अवतार है, स्वयं राधा भाव को स्वीकार करके आए हैं भक्त भाव में, और जगन्नाथ जी को जब देखते हैं रथारूढ़ जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ, तो राधा भाव भावित महाप्रभु सुख अनुभव नहीं कर रहे हैं। कहते हैं प्रियतम, रथ पर चढ़कर द्वारिका से आ रहे हो, नहीं अच्छा लग रहा है। जब आप वृंदावन में कालिंदी के तट पर एकांत में जमुना के तट पर मिलोगे बंसी बजाते हुए, वह रूप मुझको याद आ रहा है। तो कुरुक्षेत्र में एक ऐसा संयोग जुटा था, भागवत में वर्णन है कि एक बार सर्वग्रास सूर्य ग्रहण लगा था, सारे द्वारिका वाले सारे महिषियों के साथ आए थे, केवल वहां अनिरुद्ध जी को सेनापति के रूप में छोड़ दिया गया था, बाकी सब लोग आए थे। और इधर हस्तिनापुर से महाराज युधिष्ठिर और इधर ब्रज से नंद बाबा सब लोग, यहाँ तक कि श्रीमती राधा रानी भी सखियों के साथ कुरुक्षेत्र पहुंच गई थी। ऐसा संयोग जुटा, ग्रहण एक दिन लगा लेकिन रहे चार महीना, ब्रजवासी लोग चार महीना रुके, ऐसा संगम जुटा था। और सबके रहने खाने की मैनेजमेंट किसके जिम्मे थी, हस्तिनापुर के राजा महाराज युधिष्ठिर सब व्यवस्था किए थे। सब लोग आए थे, केरल से, वहां से, नेपाल से, सब जगह से लोग आए थे। बहुत अच्छा अवसर मिला था, वहां यज्ञ भी हुआ, सब कुछ वर्णन है भागवत में। तो उस भाव में राधा रानी से भगवान मिलते हैं एकांत में, तो वहां राधा रानी उनको डांटती है, क्या ड्रेस बनाए हो, ये हाथी घोड़ा और मिलने लिए बेशरम, कहीं का आया, कहा था कि हम परसों आ जाएंगे और यहाँ आकर बस फंसा हुआ है, रूप बिगाड़ कर इतने लोगों के साथ कैसा लग रहा है, बिल्कुल मुझको अच्छा नहीं लग रहा है, मुझको तो वृंदावन ही याद आ रहा है। भगवान क्षमा मांगते हैं, ठीक है मैं कुछ कामों में फंसा हूँ, क्या कहूँ प्रियतम। एक क्षण भी ये प्रसंग बहुत सुंदर है 13वां अध्याय में, इसमें तो है भी नहीं, लोभ तो हो रहा है कि उस प्रसंग को ही पढ़ दो। इतना महा भगवान क्षमा याचना कर रहे हैं, कहते हैं मैं एक सेकेंड भी तुम्हारे स्मरण के बिना नहीं रह सकता, लेकिन क्या कहूं दुर्दैव। राधा रानी भी कह रहे कि आप विदग्ध हैं, स्निग्ध हैं, मधुर हैं, मैं नहीं मानती कि आप निष्ठुर हैं। मेरे साथ जो आपका व्यवहार हुआ है उसको याद करने पर मुझको लगता है कि प्रियतम आप मेरे कितनी स्निग्ध, कितनी मधुर, कितना कोमल हृदय हो और कैसे कठोर हो गए हो। प्रियतम इसमें आपका दोष नहीं है, मुझको आश्चर्य है कि आप इतना मधुर, इतना स्निग्ध, इतना कोमल होते हुए भी ब्रजवासियों को याद नहीं कर रहे हो। बहुत आश्चर्य हो रहा है, आप गायों को याद नहीं कर रहे हो, छोड़ो किसी को नहीं याद, आप मत यशोदा को भूल गया। हम लोग तो उस नंद रानी के दुख से दुखी हैं, दिन रात रोती है बेचारी, और कसम खा खा कर कहने वाला कि मैं कभी भी प्राणाधिका प्रिया, अपने प्राण से भी ज्यादा प्रेम करता हूं, ब्रह्मा के भी आयु पाकर तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। झूठा, ऐसा नहीं है, मैं आपको झूठा नहीं कह रही हूं, निश्चित रूप से आप वही हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य, हमारा कोई दुष्कर्म आपको मुझसे दूर रखा है, उसमें आपका दोष नहीं है प्रियतम, मेरे दुर्दैव का दोष है। भगवान भी यही कह रहे हैं कि मेरे समस्त ब्रजवासी मेरे प्राण के समान प्रिय हैं, और उसमें गोपियां तो प्राणाधिका प्रिय हैं, और आप प्राण के प्राण हो श्री राधे, जितने प्राण। मैं कैसे कहूं, मैं अपनी स्थिति को किस रूप में वर्णन करूं, लेकिन हाय रे मेरा दुर्भाग्य, कुछ अपराध हो गया आप लोगों के चरणों में जिससे मुझे ब्रज से बाहर भेज दिया, और कोई दंड नहीं था, यही अपराध, यही दंड मिला कि मुझको ब्रज से आउट कर दिए। कौन किए अपराध तिहारो, काल दियो ब्रजमंडल ते, ब्रजवासी लोग गाते हैं कि हे राधे, हे ललिते, हे विशाखे, आप लोगों के चरणों में मैं कौन सी ऐसी गलती कर दिया कि मुझको आउट कर दिए। मैं आप लोगों पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, निश्चित रूप से मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आप लोगों के अतिरिक्त भी जी रहा हूं। ये सिद्धांत है कि प्रिया के बिना प्रियतम नहीं जी सकता, आप प्रिय के बिना प्रिया नहीं जी सकती, सत्य है। फिर भी क्यों जीते हैं, इसमें एक साइंस है, भगवान कहते हैं उसमें भी एक विज्ञान है कि यदि वह प्रियतम सुसाइड करने की मन बनाता है कि अब ज्यादा नहीं झेल सकता, चलो आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन उसको एक ही चीज रोकता है कि यह संदेश यदि हमारे प्रियतम सुनेंगे तो उन पर क्या बीतेगा, हमारी प्रिया सुसाइड कर गई, आत्महत्या कर ली, केवल यही उसको रोकता है, दोनों को रोकता है, क्योंकि उनके पीछे अपना सुख नहीं होता है, तत् सुख सुखित्वम होता है। प्रिया प्रियतम के सुख से सुखी रहती है और प्रियतम प्रिया के सुख से सुखी रहते हैं, इसलिए दोनों को जीने का यही आधार होता है। कभी जीवित रहेंगे तो मिलेंगे, लेकिन मर जाने की सूचना वो कैसे झेल पाएंगे यह सोच सोच कर नहीं मरती है, ये कहते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है, आप पढ़ लीजिएगा मध्य लीला के 13वें परिच्छेद में। तो श्लोक पढ़कर प्रभु एकदम प्रेमाविष्ट हो गए, प्रिय स्वयं कृष्ण सहचरी जो रूप गोस्वामी का, तब तक रूप गोस्वामी नहा कर आ गए, आते ही महाप्रभु खींच कर एक तमाचा मारे, कहते हैं प्रभु देखी दंडवत प्रांगण पड़ीला, दंडवत के प्रभु तारे चापण मारे कहते लागिला, एक तमाचा लगाए, गुड़ मोर हृदय तुई जानीला के मने, कही रूपे कैला दृढ़ आलिंगन है, चोर मेरे हृदय की गोपनीय रहस्य को तू कैसे जान गए, बड़े बड़े भट्टाचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य लोग दिमाग लगा रहे हैं क्यों वहां प्रभु बोल रहे हैं और तू कैसे जान गया। से श्लोक लैया प्रभु स्वरूपे दिखाईला, अपने अंतरंग परिकर स्वरूप जो ललिता जी के अवतार है उनको दे दिए कागज, पढ़िए जरा। और पूछते हैं परीक्षा लेकर, स्वरूप की परीक्षा लेने की, मोरे अंतर बढ़ता रूप जाने लगे मने, मेरे हृदय की बात कैसे जान गया रूप। स्वरूप कहे जाने कृपा करी अच्छे अपाने। क्या ड्रामा कर रहे हो आप, इस पर कृपा किए हो और पूछ रहे हो कैसे जान गया। अन्यथा ये अर्थकार नहीं है ज्ञान, ऐसा ज्ञान और किसी को नहीं हो सकता। तुम ही पूर्वे कृपा कैला करी अनुमान, पक्का मुझे विश्वास है कि आपने इसके पहले अपनी शक्ति दिया है तब समझ पाया है। प्रभु कहे हाँ यो हम आप प्रयाग मिलीला, ये हमको प्रयाग में मिला था, जोग पात्र जानी यार मोर कृपा दहिला। इसको जोग पात्र जानकर मैंने इसका आलिंगन किया और आशीर्वाद दिया। तो कहते हैं कि बोलो स्वरूप क्या दे दूं रूप को। कहते वो जो और कुछ बचा खुचा है सब दे, अगर कुछ नहीं दे पाए उसको दे दो। तबे शक्ति संचारी आमी कहिनु उपदेश, उसी समय उपदेश कर दिया और तुम ही करी हो यह रसे विशेष। अब इसको कुछ विशेष रस के लिए आप कृपा कीजिए। स्वरूप कहे जाते यह श्लोक देखनु तुम ही करिया छे कृपा तो वही जानू। जब मैं श्लोक पढ़ा तभी जान गया कि फले न फल कारणम मनुमीयते, फल रिजल्ट देखकर उसके पीछे कर्म का पता चल जाता है। कोई व्यक्ति एकदम डिस्टिंक्शन मार्क्स प्राप्त करता है इसका मतलब पढ़ा है, ऐसे थोड़े नंबर आ जाएगा। तो कहते हैं समझ गया। तो इस प्रकार स्वरूप दामोदर से मिलाए और महाप्रभु उस दिन तो चले गए। और चार महीना चतुर्मास रही गौड़े वैष्णव चलीला, चार महीना जो रथ यात्रा में आए थे गौड़ीय वैष्णव लोग रुके। सब लोग रूप गोस्वामी से मिलते थे लेकिन महाप्रभु की विशेष चिंता थी कि रूप पर सबका कृपा कराना है। देखिए एक सिद्धांत है, चाहे कोई कितना हो उत्कृष्ट हो, विद्वान हो, समर्थ हो, लेकिन वैष्णव की कृपा अपेक्षित है, बहुत जरूरी है। एक दिन महाप्रभु आए और आ करके भक्तों के साथ और संभ्रम उठकर अचानक आ गए। कभी कभी जो टाइमिंग पर तो इंतजार करते थे कि एक बजे आएंगे दोपहर में, लेकिन कभी कभी नौ बजे भी आ जाते थे। तो अचानक आ गए तो दोनों उठे, हरिदास जी और रूप गोस्वामी दंडवत किए। तो अचानक महाप्रभु को क्या पोथी लिख रहे हो, कुछ ग्रंथ लिख रहे हो, दिखाओ मुझे क्या लिख रहे हो। तो रूप गोस्वामी दिए जो लिखे थे। तो रूपेर अक्षर जन मुक्तार पाती, बहुत सुंदर अक्षर था, प्रीत हैला करें प्रभु अक्षरे स्तुति। और श्लोक को पढ़ करके महाप्रभु विभोर हो गए। वो श्लोक क्या था, बहुत सुंदर श्लोक। तुंडे तांडविनिम रतिम वितनुते, तुंडावली लब्धये, कर्ण क्रोध कदम बिनी घटयते, कर्णाम बुधे व्यस्पृहाम, चेतः प्रांगण संगिनी विजयते, सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम, नो जाने जनिता कियद् भीर्मृतैः कृष्णेति वर्णद्वयी। कह रहे हैं मैं नहीं जानता कि इस दो अक्षर में क्या है कृष्ण, इस दो अक्षरों में कितना अमृत भरा हुआ है, ये आज तक मैं नहीं समझ पाया। जब कृष्ण नाम का उच्चारण करता हूं तो मन में, जब जिह्वा पर एक कृष्ण नाम उच्चारण करता है तो यही मन करता है कि हजारों जिह्वा होती, एक जिह्वा से संतोष नहीं होता है, हजारों मुख से अनेकानेक मुखों की इच्छा होने लगती है कि एक जीव कम पड़ रहा है, कृष्ण 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 यही बोलता रहूं। और जब वही नाम कान में प्रवेश करता है तो मन में आता है कि करोड़ों कान होता केवल इसी शब्द को सुनता है। अभी तक तो भागवत में हम लोग सुने थे कि कृष्ण कथा सुनने के लिए पृथ्वी महाराज 10,000 कान मांगे, लेकिन उनसे पार कर गए रूप गोस्वामी। कहते हैं जब कृष्ण शब्द सुनते हैं या कृष्ण कथा सुनते हैं तो दो कान कम पड़ता है, मन करता है कि करोड़ों कान होता है। कुछ लोग पूछते हैं कि पृथ्वी महाराज के वरदान को भगवान दिए कि नहीं, भगवान से कहे कि प्रभु हमको 10,000 कान चाहिए आपकी कथा सुनने के लिए, तो भगवान दिए तथास्तु, तब तो सारे देह में कान ही कान हो गया होगा। 10,000 कान कहां कहां फिट किया गया होगा, ऐसा नहीं था। दो कान ही 10,000 कान की क्षमता उसमें बढ़ा दी गई। और एक विशेष विशेषता है कि वो संसारिक चर्चा के समय ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता था और कृष्ण कथा सुनते ही ऑन हो जाता था। कृष्ण कथा को ऑब्जर्व करता, केवल कृष्ण कथा सुनते थे, बाकी दुनिया वाले क्या बक बक कर रहे हैं सुनाई नहीं देता। तो कहते हैं कि जब यह कान में प्रवेश करता है कृष्ण नाम, तो मन में आता है करोड़ों कान होते हैं। और चेत प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाम कृति नो जाने जनिता की अद्भुत अमृत कृष्ण तिवर्णद्वयी। कहते हैं और वही नाम जब कान के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है तो ये सारे मन की गति ही जीत लेता है, अब कुछ करने का मन ही नहीं करता, सारी इंद्रियां अपना काम छोड़ देती है, जड़ हो जाती है। जब यह जीभ से उच्चारण होकर या कोई बोल रहा है कान में प्रवेश किया, हृदय में प्रवेश किया, तो अब सारा काम बंद है, वैराग्य लेना नहीं पड़ता है, हो जाता है सब कुछ खत्म। और श्लोक सुनी हरिदास हरिला उलासी, वहीं बैठे थे हरिदास ठाकुर, लेकिन क्या लिख रहा है उनको क्या मतलब, उनको नाम जपने से फुर्सत ही नहीं। तब तक हरिदास ठाकुर सुने तो नाचित लागिल श्लोकेर अर्थ प्रशंसती, नाम जपने वाला को जब ऐसा श्लोक नाम की महिमा सुने, कृष्ण नामेर महिमा शास्त्र साधु मुखे जानी, नामेर माधुरी ऐसे कहां नहीं सुनी। हरिदास ठाकुर कहे कि मैंने नाम की महिमा, कृष्ण नाम की महिमा साधु के मुख से शास्त्र से अनेकों बार सुना है, लेकिन ऐसी माधुरी ऐसी महिमा आज तक नहीं सुना। तब महाप्रभु आलिंगन करके रूप गोस्वामी का चले गए, एक श्लोक सुने, टीका टिप्पणी कुछ नहीं किए। अब दूसरे दिन देखिए बड़े बड़े धुरंधर विद्वानों को लेकर आते हैं, राय रमानंद स्वरूप दामोदर सार्वभौम भट्टाचार्य जितने उद्भट विद्वान है सबको लेकर आते हैं, और सबके सामने महाप्रभु ऐसे वर्णन कर रहे रूप की महिमा जैसे मानो भगवान शिव पांच मुख से कृष्ण के गुणों को गा रहे, पंचमुख महादेव हो गए, अपने निज भक्तेर गुण कहे हैया पंचमुख। तो सार्वभौम भट्टाचार्य राय रमानंद सब लोग सार्वभौम रामानंदेर परीक्षा करी थे, उनको देखने के लिए कहे, ईश्वर का स्वभाव है, यहाँ थोड़ा सा कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपनी टिप्पणी दे रहे हैं कि अगर कदाचित भक्तों से कोई भूल हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो भगवान के दिमाग में कोई उसका स्थान ही नहीं है, अगर कुछ अच्छा हो गया तो उसको लाखों बार कहेंगे। गोस्वामी तुलसीदास भी रामचरितमानस में इस बात को कहते हैं, रहति न प्रभु चित चूक करे की करत सुरति सौ बार ही एक ही। कोई चूक हो जाए भक्तों से तो उसको भगवान के चित्त में कोई स्थान ही नहीं, अगर कुछ अच्छा किया है तो सैकड़ों बार चर्चा करेंगे। ईश्वर स्वभाव भक्ते नालय अपराध है, अल्प सेवा बहु माने आत्म पर्यंत प्रसाद। श्लोक बोल रहे हैं, भृतस्य पश्यति गुरुं अपि नापराधन सेवां मनागपि कृतां बहुधा विपैति आविष्करोति पिशनै स्वपि नाभ्यसूयां शीलेन निर्मलमति पुरुषोत्तमोऽयम्। कहते हैं कि भगवान पुरुषोत्तम क्यों पुरुषोत्तम कहलाते हैं, कि उनका मन इतना निर्मल है कि अपने सेवक के द्वारा, सेवक कदाचित किसी गलती में फंस गया तो उसको गंभीरता से लेते ही नहीं, वो जानते हैं कि इसका यही स्टैंडर्ड है। अब भगवान श्री राम बंदरों के अशिष्ट व्यवहार को दिमाग में रखने लगे तो हो गया, प्रभु तरुतर कपिदार पर ते किए आप समान, तुलसी न कहो राम सो साहिब शील निधान। प्रभु पेड़ के नीचे बैठे हैं और बंदर उसी बगल से छटक कर पेड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। कभी कभी लक्ष्मण के लक्ष्मण जी डांटते हैं बलराम के, नहीं चुप मत बोलो। हनुमान जी कहते हैं कि ये लक्ष्मणाग्रज भगवान श्री राम हमसे कितना प्रेम करते हैं, अगर इनके दिमाग में कोई शील स्वभाव होता, पढ़ाई लिखाई होता, विद्वता होता और रूप होता, रूप सुंदर रूप को देखकर अगर भगवान अपने भक्त के रूप में स्वीकार करते, पढ़ाई लिखाई को देखकर स्वीकार करते, जाति को देखकर स्वीकार करते या सिटी में नगर में रहने वालों को स्वीकार करते तो हम बंदरों का नंबर ही नहीं आता। हम बनोकस वन में रहने वाले, जो हमारा वन ही हमारा घर है, आज तक कोई शिष्टाचार सीखे नहीं, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है। भोजन थाली में दे दीजिए, बंदर खाएंगे, पेड़ पर चढ़कर खाएंगे। कोई शिष्टाचार नहीं, रूप भी हमारा सुंदर नहीं, ब्यूटी पार्लर में सजाने पर भी अच्छा नहीं लगा। अगर भगवान सुंदर रूप को पसंद करते तो हम बंदरों का नंबर नहीं आता। लक्ष्मणाग्रज कहे हैं भागवत में, लक्ष्मणाग्रज का अर्थ है कि लक्ष्मण को भी कंट्रोल करने वाले। अगर लक्ष्मण का चलता तो हम लोगों को नहीं बहाली होती, वो तो हमारे व्यवहार से छिड़ जाते हैं। लेकिन भगवान लक्ष्मण को भी कंट्रोल कर, चुप शांत रहो, कुछ नहीं बोलना है। तो भगवान हमारे स्वभाव को जानते हैं, इसलिए हमारा नंबर आ गया। सीले न निर्मल मति पुरुषोत्तमस्य, भगवान की कोई निंदा भी करता है कि देखो ऐसे पक्षपाती होना चाहिए, बाली को मार दिए कि तुम भाई के पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया, वही गलती सुग्रीव किया, स्वप्न में नहीं चर्चा करते थे। अपने राजसभा में बराबर आसन पर बिठा कर कहते थे वशिष्ठ जी से, गुरुदेव ये हमारे मित्र सुग्रीव जी हैं, बराबर आसन पर, इनकी कृपा से मैं लंका पर विजय प्राप्त किया। बाप रे, एक बंदर को सारा सभा देख रही है। तो भक्त संग प्रभु आइला देखी दुई जन, दंडवत हैया कैला चरण बंदन। भक्तों के संग आए हैं ये देख कर दोनों, दोनों मतलब रूप और हरिदास, प्रणाम किए। इसके बाद पिंड के ऊपर जो चबूतरा था वहां सार्वभौम भट्टाचार्य हरिदास वो स्वरूप दामोदर इन लोगों को बैठाए और कहे कि वो श्लोक पढ़ो, पूर्व पर रूप प्रभु आज्ञा दिला, जो रथ यात्रा के समय मैं गा रहा था यह कौमार हर स ये व चैत्र छपा, उस श्लोक को बोलो और उस पर तुमने क्या लिखा है उसको बोलो। तो लज्जाते ना पढ़े रूप मौन धरीला, रूप को बड़ा संकोच हो रहा था, इतने बड़े बड़े लोगों के सामने हमको बुलवा रहे, नहीं बोल पाए, मौन हो गए। तो स्वरूप गोसाई तबे से यह श्लोक पढ़ी ला, स्वरूप गोस्वामी तो जान गए थे उस श्लोक को, लेकिन राय रमानंद और सार्वभौम भट्टाचार्य ये लोग नहीं सुने थे, तो उनके सामने बोल नहीं पा रहे थे, रूप गोस्वामी लज्जित हो रहे थे। तो स्वरूप दामोदर बोले, राय रमानंद सुन रहे हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य सुन रहे हैं, प्रिय सोयम कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलिता तथा हम साराधा तदिदम भयो संगम सुखम तथा प्यंत खेलन मधुर मुरली पंचम जुषे मनो में कालिंदी पुलिन विपिनायैष प्रियति। वही राधा रानी के भाव में महाप्रभु बोल रहे हैं, उन लोगों को अर्थ नहीं करना पड़ा, केवल श्लोक बोले समझ गए। राय भट्टाचार्य बोले, तुम्हार प्रसाद बिने तुम्हार हृदय जानी लग के मने। भट्टाचार्य कह रहे हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य उस समय विश्व के सबसे बड़े विद्वान, और राय रमानंद कहते हैं ये बात, ये रूप जान गया, कैसी जान गया, ये आपके कृपा के बिना ऐसे नहीं हो सकता, तुरंत समझ गए। राय रमानंद कहते हैं, जैसे गोदावरी के तट पर आकर हमारे अंदर शक्ति संचार करके सिद्धांत का प्रश्न कर रहे हैं और हमसे उत्तर सुन रहे हैं, आमाते संचारी पूर्वे करिला सिद्धांत कहिला सिद्धांत ये सब सिद्धांत ब्रह्मा नहीं पाए अंत। जिस सिद्धांत को ब्रह्मा भी नहीं समझ पाते उस सिद्धांत को आपने मेरे द्वारा सुना। मैं तो यंत्र था, यंत्र हारमोनियम में आवाज निकलता है उसका नहीं है, बजाने वाला जैसा बजा ले जो स्वर निकाल ले वो तो यंत्र है बेचारा। ताते जानी पूर्वे तुम्हार प्रसाद पाइया छे प्रसाद तहा बिना नहीं तुम्हार हृदय अनुवाद। आपके हृदय का अनुवाद करने वाला यह रूप बिना आपकी कृपा के नहीं कर सकता। तो प्रभु कहते हैं कि ये एक नाटक लिख रहा है, महाप्रभु चर्चा करते हैं। तो उस नाटक में एक ऐसा श्लोक लिखा है कि उसको सुनते ही व्यक्ति का दुख समाप्त हो जाएगा। तो महाप्रभु कहे कि बोलो उसको सुनाओ वो भूमिका का श्लोक नाम की महिमा। फिर स्वामी संकोच कर रहे हैं, अरे बोलो बोलो बारह बारह प्रभु यदि तारे आज्ञा दी लो बार बार तबे से ये श्लोक रूप गोसाई कही लो। बार बार कहने लगे तो बोले वही नाम की महिमा।
तुंडे तांडविनी रतिम तुंडे तांडविनी रतिम बिथुनुते तुंडावली लब्धे कर्ण क्रोध कदंबिनी घटयते कर्णाम्बुदेभ्यस्पृहां चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिं नो जाने जनिता कियद् भ्रियमृतये कृष्णेति वर्णद्वये।
श्लोक का अनुवाद हो चुका है तो सारे भक्त श्लोक सुनकर चकित हो गए। जो हालत हरिदास ठाकुर का वह सबका। इस श्लोक को स्वरूप दामोदर भी नहीं सुने थे। स्वरूप दामोदर राय रामानंद और सार्वभौम भट्टाचार्य सभी बोले नाम महिमा सुनिया छी अपार, बहुत नाम की महिमा हजारों श्लोक सुने एमन माधुर्य के नहीं बरे यार। इस प्रकार की माधुरी किसी ने नहीं वर्णन किया। राय कहे कौन ग्रंथ करे है न जानी, कौन ग्रंथ लिख रहे हो जो सिद्धांत की खानी जहार भीतरे सिद्धांत खानी। जिस ग्रंथ के भीतर इतना बड़ा सिद्धांत की खजाना है वो कौन ग्रंथ है। तो स्वरूप दामोदर कहते हैं कि कृष्ण के प्रति नाटक लिख रहे हैं और दो भाग में ब्रज लीला और पूर्ण लीला। एक का नाम है विदग्ध माधव और एक का ललित माधव। विदग्ध माधव और ललित माधव दुई नाटकेर प्रेम रस अद्भुत सौ। तो राय रामानंद तो बहुत बड़े साहित्यिक विद्वान थे। राय रामानंद का स्तर बहुत ऊंचा है, हमारे कल्पना से बाहर। वो भी लिखे हैं जगन्नाथ नाटकम या कई ग्रंथ लिखे हैं और साहित्य के बड़े मर्मज्ञ थे, बहुत बड़े मर्मज्ञ। और महाप्रभु के जगन्नाथ जी के सामने जो देवदासियां नृत्य करती थी शयन के समय, उस समय एकदम ज्योति 16 14 वर्ष की ज्योतियों को सारा श्रृंगार करते थे। उनके शरीर के श्रृंगार में कस्तूरी केसर लेपित उनके स्तन पर वस्त्र पहनाते, श्रृंगार करते उनके मुखमंडल का, सब कुछ कैसे शरीर को सजाना है बनाना है बनाकर, और उनको संगीत सिखाते लय स्वर सिखाते और जगन्नाथ जी के सामने नृत्य करने का अभ्यास कराते। और जब जगन्नाथ जी उनके द्वारा गाए गए गीत को सुनते तब शयन करते। तो जो जयदेव जी का सुप्रसिद्ध गीत गोविंद है उसका ट्रेनिंग कराते राय रामानंद। इतनी अद्भुत थे। और कभी कभी महाप्रभु पूछते राय कहाँ है, तो कहते वो देवदासियों को सजा रहा है, उनको संगीत सिखा रहा है। महाप्रभु कहते बाप रे हमारे सुनने पर भी विकृति आ जाती है, देखो महाप्रभु का टाव। कहते हैं सुनने पर कि ज्योतियों का श्रृंगार करता है मन में विकृति आती है, कास्ट की स्त्री को देखने पर फोटो देखने पर विकृति आ जाती है। वो तो अद्भुत व्यक्ति है राय रामानंद, जिसकी प्रशंसा करते हैं महाप्रभु एकदम अद्भुत सीमा तक। तो राय रामानंद है एक एक साहित्य के मर्मज्ञ। कहते हैं कि कौन ग्रंथ लिख रहे हो, नांदी मुखिया श्लोक पढ़ो तो भूमिका का। जिसको मैं सुनूं, फिर रूप संकोच कर रहे हैं। महाप्रभु कहते बोलो बोलो, रूप श्लोक पढ़े प्रभु आज्ञा मानी। सुधा नाम चांदी रामपि मधुरी मोन माद दमनी दधा नाराधा दी प्रलय घन सारई सुरभितम समन्ता संतापोद गम विषम संसार सरणी प्रणीताम ते तृष्णाम हर तु हरि लीला शिखरणी। कहते हैं श्री कृष्ण की लीलाएं भौतिक जगत में व्याप्त कष्टों को कम करे और अनावश्यक इच्छाओं को समाप्त करे। जो मन में विविध प्रकार की वासना है उन वासनाओं को समाप्त करती है कृष्ण कथा। भगवान की लीलाएं शिखरणी के समान है। शिखरणी दही और मिश्रित कर्पूर आदि से युक्त शिखरणी बनता है, ये इलायची आदि डालकर, तो ये शिखरणी के समान है। वो दही का ही टेस्ट बढ़ा दिया जाता है शिखरणी बनाने। तो ये चंद्रमा पर उत्पन्न अमृत के गर्व को भी नीचा दिखाने वाली है। जो चंद्रमा में मधुरिमा है, अमृत है, क्योंकि ये श्रीमती राधा रानी और गोपियों के सघन प्रेम व्यापार को सुगंध फैलाने वाली है। उसमें इलायची क्या है, गोपियों का भाव, वो सुगंध दिखता है कृष्ण कथा में। गोपियों का समर्पण, गोपियों का भाव कृष्ण कथा का सुगंध है। राय कहे कह इष्ट देवेर वर्णन, प्रभु संकोच रूप ना करे पठन। तुम्हारा इष्ट देव है, नमस्कार मंगलाचरण का श्लोक बोलो। तो प्रभु कहे क्यों संकोच करे, बार बार संकोच करता है बोलो। ग्रंथ का फल तो यही है ना कि वैष्णव समाज सुने। प्रभु कहे कह के ने कर संकोच लाजे, ग्रंथेर फल सुनाई बा वैष्णव समाजे। वैष्णव अगर सुनने में आनंद ले ग्रंथ तो यही सार्थकता है ग्रंथ लिखने का। और प्लेटफार्म पर बिकने वाली मनोहर कहानियां थोड़े है, ये तो वैष्णव के समाज में ही आस्वादनीय ग्रंथ है। बोलो तबे रूप गोसाई यदि श्लोक पढ़ी लो। और श्लोक तो पढ़ दिए रूप गोस्वामी, लेकिन संकोच हो रहा था। महाप्रभु के गलत बोल दिया, और महाप्रभु के प्रशंसा उसमें था, उस मंगलाचरण में। क्या वो श्लोक लिखे हैं, अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुम् उन्नतो जलरसाम स्वभक्ति श्रेयम् हरिः पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु सचिनंदन। कहते हैं अब तक एक एक चीज बेजोड़ लिखते हैं रूप गोस्वामी, इसीलिए तो राय रामानंद कहते हैं कि इसके श्लोक का कोई तुलना नहीं। कहते हैं अब तक पूरे विश्व इतिहास में, वैदिक इतिहास में जो संपत्ति डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई समाज के सामने, नहीं रखा गया, अनर्पित अर्पित नहीं किया गया, सर्विस नहीं जिसका किया गया, चरिम चिरात बहुत कालों तक, कई बार भगवान का अवतार हुआ गए, लेकिन कभी जिसको नहीं बांटा गया, वह संपदा वह खजाना गोलोक का लेकर करुणया वतीर्ण कलऊ, इस कलयुग में करुणा से वशीभूत होकर अपने प्रेम संपदा को समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम, अपनी प्रेम संपदा को लेकर, उन्नत उज्ज्वल रस को लेकर, जो गोपी भाव को लेकर, हरि पुरर सुंदर अद्विति, वही हरि गोलोक बिहारी ब्रजेन नंदन साक्षात श्री कृष्ण, साक्षात वही पुरर सुंदर अद्विति कदम संदीपिता, अपने रूप को, अपने कृष्ण वर्ण को राधा कांति से, गौरांग कांति से छिपा करके जो जनरल पब्लिक को गोलोक का प्रेम बांटने के लिए आए, सदा हृदय कंदरे, वही प्रभु हमारे हृदय कंदरा में, इस हृदय के घोर अंधेरे गुफा में जहां प्रकाश है ही नहीं, कोई लाइट नहीं, वो कंदरा है, कोई वहां बिजली का कनेक्शन नहीं है, कंदरा है, सूरज का किरण नहीं जाता है, जहाँ जन्म जन्मांतर से पता नहीं किन विषयों की वासना से घोर अंधकार भरा हुआ है, इस कंदरा में आकर छिप जाइए। अगर गोपियों से आंख मिचौनी खेलते हैं, आपको छिपने में दिक्कत महसूस हो रहा हो, तो यहीं आ जाइए, छिपने लायक जगह है। आप सदा हृदय कंदरे हमारे हृदय के गुफा में, हे श्री हरि, हरि गुफा में शेर छिपते हैं, एक हरि का अर्थ सिंह भी है और हरि माने श्री भगवान। वह कौन है? वह सचिनंदन, वह सचिनंदन नाम रख दिए, वह सचिनंदन सची पुत्र गौर हरि, आप हमारे हृदय कंदरा में आकर छिप जाइए, सदा छिपे रहिए यहीं। तो यह तो अद्भुत बात है, इसमें सीधा महाप्रभु की प्रशंसा है। तो महाप्रभु कहते हैं अति स्तुति है, प्रभु सुनी कहे अति स्तुति है, इसमें ज्यादा प्रशंसा है, ठीक नहीं है। सब भक्तगण कहे श्लोक सुनिया, कृतार्थ करीला सबा श्लोक सुनाइया। राय रमानंद कहते वाह, आज कृतार्थ कर दिया, महाप्रभु की इतनी बड़ी महिमा कि स्वयं भगवान अपने प्रेम संपदा को देने के लिए करुणा से वशीभूत होकर आए। भगवान जब वैदिक मर्यादा का प्रवचन किए तो उनके मन पर प्रेशर हुआ कि इसको कैसे सिखाया जाए लोगों को, कैसे पिता की आज्ञा मानना चाहिए, कैसे गुरु की आज्ञा मानना चाहिए, कैसे समाज में रहना चाहिए। इसको सिखाने के लिए आ गए मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर श्री राम। और भगवान किसको कहते हैं, एकदम पूरा फूल फेज में आनंद लेने के लिए आ गए, तो लीला पुरुषोत्तम के रूप में। और लीला पुरुषोत्तम के रूप में आकर जो आनंद ब्रजवासियों के साथ, जो परकिया भाव आदि गोपियों के साथ जो रस का स्वादन किए, तत्सुख सुखितम, उस रस को जनरल पब्लिक को भी दिया जाए। एक गोलोक में जाकर एकदम तड़फड़ा गए, कोई व्यक्ति जब कोई अच्छा चीज कहीं खाता है, कहीं किसी होटल मिल गया, मार्केट में कोई अच्छा फल या अच्छा मिठाई, तो मन में आता है कुछ घर में भी ले जाना चाहिए, अपनी पत्नी के लिए, बच्चे के लिए, या कोई अच्छा चीज देखता है तो मन में आता है यार उन लोगों को भी दिखाना चाहिए। तो स्वयं भगवान विचार करने लगे, यार जिस रस को मैं जाकर ब्रज में स्वादन किया और उसमें भी कुछ उत्कृष्ट रस जो गोपियों ने स्वादन किया, जो मुझे भी मुंह असर नहीं है, तो दो कारण हुआ। रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, सारे रस का स्वादन करने वालों में सिरमौर कृष्ण को लोभ हुआ कि यार मुझ में कौन सा ऐसा रस है कि गोपियां पागल बनी हुई हैं, गोपियों के मूड में आकर अपना रस स्वादन करना है एक, और दूसरा परम करुण, और इस रस को क्यों स्पेशल रखा जाए, जनरल पब्लिक में क्यों न दिया जाए, यह है उनकी अपार करुणा, क्योंकि सारे जीव उनके हैं। तो इससे प्रभावित होकर स्वयं भगवान ब्रजेन्द्र नंदन श्री कृष्ण, कृष्ण ही गोरे रूप में आ गए, कृष्ण अब गौर कृष्ण बनकर आ गए इस रस को देने के लिए। तो इस श्लोक को सुन करके एकदम सब लोग कहने लगे कि वाह अद्भुत अद्भुत महिमा। राय कहे और क्या लिखे हो, सुनने की इच्छा हो रही है। तो महाप्रभु कहे और बोलो। तो एक एक श्लोक इतना महत्वपूर्ण है, इसमें केवल अब श्लोक ही श्लोक है विदग्ध माधव ललित माधव का। तो कहते हैं कि बहुत सुंदर, कुछ श्लोक को सुनने के बाद कहते हैं, राय कहे कह देखी प्रेमोत्पत्ति कारण, पूर्वराग विकार चेष्टा काम लिखन। राधा कृष्ण के मिलन के पहले का रस थोड़ा वर्णन करो, पूर्वराग कैसे राधा रानी के मन में भाव उत्पन्न हो रहा है कृष्ण के प्रति। क्रमे श्री रूप गोसाई सकली कही, धीरे धीरे सब पढ़ रहे, सुनी प्रभु भक्त गणे चमत्कार है। कृष्ण के पूर्व राग का वर्णन करते हैं, एकस्य सूतमेव लुम्पति मतिम कृष्णे इति नामाक्षरम। ललिता जी से राधा रानी कहती हैं, राधा रानी एकदम विषाद में बैठी हैं, रो रही हैं। ललिता कहती क्या हो गया, तो कहती क्या कहूं ललिते, इस संसार में मेरी जैसी कुल्टा स्त्री सुनने को भी नहीं मिलेगा, हद हो गया मेरे बुद्धि की, क्या हो गया। तो कहती एकस्य सुतमेव लुम्पति मतिम कृष्णे इति नामाक्षरम।
शांदोन्माद परंपरा उपनयत अन्यस्य वंशी कल ऐसा स्निग्ध घन द्युति मनसि में लग्न पटे बिक्षणात कष्टम थिक पुरुषस्त्रय रतिन भू मन्ने मृति श्रेयसी। हे ललिते क्या मैं बताऊं, जब से मेरे कान में शब्द पड़ा है एक व्यक्ति का नाम कृष्ण, एक कृष्णेति नामाक्षरम, जब कृष्ण नाम के अक्षर मेरे कान में पड़ा, उस व्यक्ति के नाम जब से मैं सुनी हूं, मेरी बुद्धि बार बार उसको देखना चाहती हूँ, कौन है कृष्ण, कौन है कृष्ण। और फिर एक दूसरा व्यक्ति एक दिन ऐसे स्वर में बंसी बजा रहा था कि उस बंसी ध्वनि को जब से सुनी हूं, मेरे मन में उन्माद हो रहा है कि वो बजाने वाला कौन है, उसको देखना चाहती हूँ। देखो मेरी स्थिति। यही नहीं सखी, एक बार एक चित्र देखी, एक चित्र जिसमें अद्भुत सुंदर बिजली कौंध गई मेरे चित में उस रूप को देखकर। और मैं जब अपनी स्थिति पर विचार करती हूँ तो मुझे धिक्कार है, एक ही साथ तीन तीन पुरुषों का चिंतन करती, हद हो गया। कष्टम धिक पुरुषस्त्र, तीन पुरुषों का रतिन भूम मन ने मृति श्रेयसी, मुझे धिक्कार है, इससे तो अच्छा है मर जाना, आत्महत्या कर लेना। एक ही स्त्री तीन लोगों का चिंतन कर रही है एक समय, ऐसा होता कि चलो बारी बारी से नहीं, एक बार में तीनों से समान रूप में प्रेम है। यम सखी सुदुस्साध्या राधा हृदय वेदना गीता जत चिकित्सा कुछ सायाम परिवश्यति। हे सखी, ललिता विशाखा आपस में बात कर रहे, इस राधे के हृदय की धड़कन को दूर करना बहुत कठिन है, इसका कोई उपचार ही नहीं है, अपजस ही हाथ लगेगा, इसमें हाथ ही नहीं लगाना। तो ललिता जी कहती है कि श्रीमती जी, आप जानती हो तीनों कौन है, यही तो समस्या है, नहीं जानती हूँ तीनों का परिचय, नहीं जानती हूँ कौन है। तो कहते रे पगली, ललिता जी कहती हैं, जो कृष्ण नाम से संज्ञा प्राप्त किया है, कृष्ण जिसका नाम है, उसी का स्वर बंसी का तुमने सुनी है, और जो बंसी बजाया है उसी का चित्र देखी है, एक ही तीनों है, तीन नहीं है। अच्छा, एक ही एकदम चकित हो, तो ललिते उससे मिला दो, हमको मिला दो, तब तो ठीक है, तब तो अपने को सती पतिव्रता मानती है, तब मेरा चित ज्यादा गलत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से लिख रहे हैं। अब देखिए, ये है रूप गोस्वामी का कमाल, ये सब श्लोक में वर्णन करते हैं। अब राधा रानी क्या सोची नहीं सोची, लेकिन रूप गोस्वामी का मन राधा भाव में सोच रहा है। और महाराज श्री कहते हैं, हमारे गुरु महाराज, कि जो रूप गोस्वामी सोच दिए वैसे महाप्रभु भगवान करते थे, ऐसा नहीं है कि वो झूठे लिख दिए। एक बार राधा रानी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए रूप गोस्वामी लिख रहे थे, तो लिखे कि जब राधा चलती है और पीछे से उनका जूड़ा हिलता है, या कभी एक खेलती है झूलन, तो झूलन में कभी कभी उनका चोटी हिलता है, तो एकदम नागिन की तरह लगता है, पीठ पर नागिन घूम रही है काली काली सांप। तो रूप सनातन गोस्वामी देख लिए, क्या तुम इसको ऐसा वर्णन कर दिया, भोला बाबा बना दिया, शिव जी राधा रानी के सौंदर्य का वर्णन, राधा रानी के गले में सांप शोभा देता, अरे उनके शिव जी के गला में शोभा देता है, तू राधा रानी के पीठ पर सांप चढ़ा दिया, तुमको और उपमा नहीं मिला चोटी का, यह किसी ज्योति का श्रृंगार है, किसी सुंदरी का सौंदर्य है कि उसके पीठ पर नागिन नाचे। सनातन गोस्वामी कुछ सुना दिए तो रूप गोस्वामी कहे क्या उपमा लिखो, कुछ समझ हमारे दिमाग में यही आया, तो कहे कि नहीं हमारी दृष्टि में ठीक नहीं है। तो सनातन बड़े थे, तो चुप हो गए रूप गोस्वामी, और परिक्रमा चालू किए गोवर्धन के,
परिक्रमा कर राधा कुंड के निकट से गुजर रहे हैं तो देख रहे हैं कुछ लड़कियां झूला खेल रही है। सावन का महीना है, झूला पेड़ में लगा है, कुछ लड़कियां खेल रही है। अचानक सनातन गोस्वामी की दृष्टि गई तो देख रहे हैं कि जो बैठी है पेड़ के ऊपर से एक नागिन आकर उसके पीठ पर घूम रही है। तो कहती लाली, अरे देखो देखो सांप सांप सांप। तो लड़कियां कहती कहां सांप, सब देखने लगे किसके तो निकट गए तो कुछ नहीं है। अरे बाबा तू अपना काम कर। तो फिर खेलने लगे, फिर झूला चालू हुआ। सनातन गोस्वामी पीछे से देखते, अरे सांप सांप सचमुच सांप, दौड़ कर दोबारा आ गया। तो लड़कियां कहती है बाबा तुम्हारा कोई काम नहीं है, बस लड़कियों के पीछे पड़े हो, सांप सब झूठे, चल अपनी परिक्रमा। तो फिर तीसरा बार जब सनातन गोस्वामी चले तो फिर मुड़ कर देखते हैं तो एकदम प्रगट सांप दिखाई दे। दौड़ कर आए मना करने के लिए, देखते हैं कि नौ आज झूला नहीं ना, एक लड़की है, खत्म। अब तो सनातन गोस्वामी का शरीर ही सूख गया। ओहो किशोरी क्षमा करो, समझ गया। परिक्रमा छोड़कर लौटे और उप गोस्वामी को कहे ठीक लिखा है। और समझ गया यही उपमा है, कोई झूलन नहीं, कोई लड़की नहीं, कुछ नहीं, उनको दिखा दिया गया तो रूप के कलम पर क्यों अंगुली उठाता है। वो जो लिखता है वैसा मैं नहीं भी किया हूं तो करूंगी, उसका उपमा अन्यथा नहीं है। तो यह है रूप गोस्वामी। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जैन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदम पदांतिकम। यह है कृष्णदास कविराज गोस्वामी की कामना युक्त प्रार्थना कि जो चैतन्य महाप्रभु के मनोभाव को इस पृथ्वी पर स्थापित किए, क्या कभी वो रूप गोस्वामी कृपा करके अपना चरण कमल देंगे। यह लालसामयी प्रार्थना है। तो इस प्रकार ये सब भाव लिख रहे हैं। तो राय कहे कह देखी भावे रसो भाव, बहुत विस्तार से है, मैं छोड़ रहा हूं। रूप कहे ऐसे है कृष्ण विषय भाव, कैसे ऐसे है कृष्ण विषय भाव, वर्णन कीजिए भाव का स्वभाव। तो जब सुनाए पीड़ा भी नवकाल कूट कटुता गर्वस्य निर्वासनो निश्चंदेन मुदाम सुधा मधुरिमाम अहंकार संकोचन प्रेमा सुंदरी नंद नंदन परो जागर्ति जस्यांतरे ज्ञायन्ते स्फुटमस्य वक्र मधुरा तेनैव विक्रांतयः। हे सुंदरी, परमासी जी कहती हैं जो माया राधा रानी से, हे सुंदरी यदि कोई नंद महाराज के पुत्र भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न कर लेता है तो इस प्रेम से सारे कटु और मधुर प्रभाव उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। अरे ये क्या बोल रही है जोग माया, करें अगर कृष्ण से कोई प्रेम किया तो एक ही साथ उसका हृदय सरस एकदम कोमल एकदम नवनीत तुरंत का मथा हुआ जो मक्खन निकलता है, फ्रीज का रखा हुआ कठोर नहीं, तुरंत का मथा हुआ उसको पकड़ कर देखिए कैसा मुलायम होता है, वैसा स्निग्ध हृदय हो जाता है कृष्ण से प्रेम करने पर, और वज से भी कठोर हो जाता है। एक साथ वो अमृत कटुता और मधुरता दोनों हृदय में स्थापित करता है। भगवत प्रेम के विषैले प्रभाव सर्प के गहन और ताजे विष को परास्त कर देता है। भगवान के प्रति जो प्रेम होता है विषैले सर्प के विष को भी पराजित करता है। उसके दृष्टि में संसार बिल्कुल फीका नहीं, इतना कठोर हो गया, माँ का पिता का परिवार का भाई का मित्र का किसी का केयर नहीं कर रहा है। ये देखिए वो उसका कितना सशक्त हृदय हो गया, अपने संबंधियों का कोई परवाह ही नहीं करता, विष को भी पराजित कर दिया। और तीस पर भी एक साथ दिव्य आनंद होता है और जो ढलकर सर्प के विषैले प्रभाव को उसके सिर पर अमृत डालने से जो सुख प्राप्त होता है उसको भी परास्त करता है। और विष भी है और अमृत भी है, इतना सुख कहीं नहीं है जो कृष्ण सुख है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, केवल सुख वही है। अमृत का खान है और विष का खान, विष किसके लिए? संबंधियों के लिए, और अमृत व्यक्तिगत उसके लिए और भगवान के लिए। तो एक साथ ऐसा दे, यह दोहरा प्रभावशाली अनुभव, एक साथ विषैला और अमृतमय, यह है कृष्ण संबंध। और परमासी जी कही ना कही है तो बात की चीज है, लेकिन रूप गोस्वामी के हृदय में कृष्ण प्रेम की यह परिभाषा है, और यह परिभाषा महाप्रभु के हृदय की परिभाषा है। और महाप्रभु का अर्थ राधा रानी और कृष्ण के हृदय का भाव है, राधा कृष्ण मिली अब दो गौर रूप अवतरी एक साथ। तो राय कहे कह सहज प्रेमेर लक्षण, रूप गोसाई कहे साहजिक प्रेम धर्म, कई श्लोकों में सुना रहे हैं। एक एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण, छोटा श्लोक नहीं लिखते हैं, बड़ा बड़ा। तो कहते हैं राय कहे वृंदावन मुरली निश्वना, कृष्ण राधिकार कैसे करिया छे वर्णन, थोड़ा मुरली का वर्णन करो। तो कह तुम्हार कवित्व सुनी है चमत्कार, क्या बंसी का वर्णन करते हो। तो रूप गोस्वामी उनको नमस्कार करके उसको सुनाने लगे, बहुत सुंदर सुंदर। सुगंध हो माकंद प्रकर मकरंद सस्य मधुरे, विनयस्यंदने बंदी कृता मधुपम वृंदम मुहुरीद, कीर्तन दोलम मंदो नति भीर निलय चंदन गिरे, मर्मानंद बिंदा विपिन मतुलम तुंदी लय थी। कह रहे हैं कि नव विकसित आम की मंजरियों से जो चूती हुई मीठी सुगंध है, जब आम मोजर ले लेता है फूल, तो उसे भिन भिन कर गंध निकलता है। इतना सुगंध, आम के बागीचे के तरफ जाइए, मोजर ले लिया आम, तो उसे एक ऐसा गंध निकलता है सुगंध, और उसमें भौरे झुंड के झुंड उस रस को आस्वादन करते हुए आकृष्ट दिखते हैं। और यह जंगल चंदन वृक्षों से पूर्ण मलय पर्वत से आने वाली मंद गतिमान पवन के जैसा हिल रहा, जैसे मलया गिर के चंदन युक्त पर्वत से हवा का गंध आ रहा है, वैसे आज वृंदावन सुगंधित दिख रहा है। क्यों? कृष्ण के बंसी की ध्वनि से गुंजायमान है, वैसा ही आनंद मकरंद विभोर विस्तार कर रहा है। कई श्लोकों में है, ये पूरा करना है इसलिए सबको छोड़ना पड़ता है। राय कहे तुम्हार कवित्व अमृत धार, राय रामानंद कहते हैं तुम्हारी कविता तो अमृत की खान है। दूसरे नाटक का थोड़ा नांदी व्यवहार बोलो। रूप कहे कहां तुम्ही सूर्योपम भास, मुई कुन छुद जेन खद्योत प्रकाश। रूप गोस्वामी कहते हैं आप कहां सूर्य जैसा भास्कर साहित्य जानने वाले, और हम एक जुगनू खद्योत, और आपके आगे मैं धीरता पूर्वक बोलता जा रहा हूं। आप प्रशंसा कर रहे हैं, आप मुझसे कहवा रहे हो बोलो बोलो बोलो, और मैं बोलता जा रहा हूं। तो कैसे मैं इसका वर्णन करूं, कहीं थोड़ा सा नांदी श्लोक एक इसका भी बोल दो, दूसरे नाटक का। तब बोलते हैं सुर रिपु सदृश मुरोज कोकान मुख कमलानि च खेदयन नखंडः, चिरमखिलम सुहृत कोरन नंदी दिशतु मुकुंद जसा शशि मुदमुह। मुकुंद की सुंदर चंद्रमा तुल्य महिमा को, जो मुकुंद के भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप गुण, उनके सौंदर्य चंद्रमा के समान है, चंद्रमा, और चंद्रमा से असुरों की पत्नियों के कमल सदृश मुख को ज्योतिर्मान चक्रवाक, और पक्षियों के तुल उनके उठे हुए अस्तनों को पीड़ा पहुंचाती है। कहते हैं कि जैसे श्री कृष्ण का सुंदर मुख देखकर तो चातक को बहुत अच्छा लगता है, चंद्रमा को देखना चाहता है, लेकिन कमल को, चंद्रमा जब उग जाता है तो कमल सिकुड़ जाता है, सूर्य उगते हैं तब तो खिलता है कमल, सूर्य के प्रकाश में कमल खिलता है, चंद्र के प्रकाश में सिकुड़ जाता है। कहते हैं सुंदर श्री कृष्ण के मुख चंद्रमा को देखकर दुष्टों की पत्नियों का मुख कमल मुरझा जाता है, ये तो मारेगा, हमारे पति को छोड़ेगा नहीं। तो असुरों की पत्नियां, असुरों की पत्नियां की मुख मुरझा जाता है, उनको आनंद नहीं मिलता है। ये द्वारिकाधीश का वर्णन है। और चक्रवात पक्षियों के तुल्य उनके अस्तनों को पीड़ा होता है, चक्रवात कष्ट होता है, किंतु यही महिमा उनके भक्तों को एक साथ जो कि चकोर पक्षी के समान है भाने वाली है, वह महिमा आप सबको सदैव आनंद प्रदान करे। भक्तों को चकोर जैसे चंद्रमा को ही देखता रहता है रात भर एक टकटकी लगाकर, वैसे भक्तों को यह मुखमंडल दिखने लायक हो, देखते रहते हैं एक साथ ही कृष्ण के। कृष्ण की विशेष विशेषता है, अलग अलग लोग को अलग अलग दिखता है। तो तब उसी में कहते अच्छा इसकी भूमिका थोड़ा बताओ मंगलाचरण द्वितीय नांदी कह देखी। फिर राय पूछिला संकोच पाइयारू नहीं कहना चाहते, नहीं बोलो बोलो, तो बोलने लगे। निज प्रणयिताम सुधा मुदय आपनुवन यह चितौ क्रियत अत्य मुरी कृत द्विज कुलाधिराज स्थिति स कुंजित तमस तति मर्म सचि सुताख्य शशि वशीकृत जगन मना किमपि शर्म विन्यस्यतु। तो इसमें वर्णन करते हैं कि जो चंद्रमा के समान सुंदर शशि है वह शशि नंदन है, वह अपना भक्तिमय प्रेम फैलाने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। ब्राह्मण समुदाय के सम्राट है, द्विज कुलाधिराज स्थिति, वे अज्ञान के समस्त अंधकार को भगाने वाले हैं और विश्व के हर प्राणियों के मन को अपने वश में कर सकते हैं। वह उदयमान चंद्रमा सबके सौभाग्य को जगावे और अपना किरण सबके हृदय में फैलावे, शुभकामना है। सुनिया प्रभु रे यदि अंतरे उल्लास, भीतर तो चेतन महाप्रभु प्रसन्न हो रहे हैं कि वाह मेरी महिमा समझ रहा है, लेकिन बाहिरे कहे किछु करी रोसा भास, ऊपर से कहते कहां तुम्हार रस कृष्ण रस काव सुधा सिंधु, कहां इतना अमृत के समान सुधा के समुद्र बरसाया, तार मध्य मिथ्या के ने स्तुति छार बिंदु, इतना बढ़िया खीर बनाकर किरोसन डाल दिया इतना बढ़िया खीर तैयार किया और उसमें किरोसन तेल डालकर सारा छार बना दिया। महाप्रभु कहते हैं गड़बड़ कर देता है। राय कहे रूपेर काब अमृतेर पूर, वहीं बड़े साहित्यकार बैठे हैं राय रमानंद, तार मध्य एक बिंदु दिया छे कर्पूर, ये जो एक बिंदु है वो केरोसन नहीं है कर्पूर है, उसका सुगंध आ रहा है। नाक मत खराब कीजिए, केरोसन का गंध नहीं है, ये कर्पूर का गंध है। प्रभु कहे राय तुम्हार यहाँ ते उल्लास, सुनते ही लज्जा लो के करे उपहास। राय तो समझ नहीं रहे हो, अपने शिष्य से अपनी प्रशंसा करा कर सुनना, कितना बड़ा लोग क्या कहेंगे, मैं अपनी प्रशंसा सुन रहा हूं उसके मुख से लोग मेरा उपहास करेंगे। यह है भक्ति की उच्चतम स्थिति। महाप्रभु इसको व्यवहारिक प्रैक्टिकल रूप में दिखा रहे हैं। हाय तो एकदम उत्तम, उसमें कोई काटने लायक नहीं है, लेकिन मेरे सामने कह रहा है ये गड़बड़ है मेरी प्रशंसा। राय कहे लोकेर सुख इहार श्रवणे, किसी को बुरा नहीं लगेगा। अभीष्ट देवेरे स्मृति मंगलाचरणे, अपने इष्ट का अपने गुरु की प्रशंसा करना उनका कर्तव्य है। कभी कभी भागवत कथा के अनुमोदन में भक्त लोग अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करते हैं, महाराज चिन्ह जाते हैं, बंद करो नहीं बोलेगा तो उनका काम है चिन्हना, ठीक है, लेकिन बोलना गुनाह नहीं है। राय कहे कौन अंगे पात्र प्रवेश, तबे रूप गोसाई कहे तहार विशेष, फिर कुछ विशेष बात बतलाते हैं क्या पात्रता किसको आप, और नाटक का क्या विधान है आगे।
कहते नटतम किरात राज निहत्य रंगस्थले काल निधिना समय तेन विधेयम गुणवती तारा ग्रह ग्रहण। असभ्य लोगों के शासक दुष्ट कंस का वध करने के बाद मंच पर नृत्य करते हुए समस्त कलाओं के गुरु भगवान उपयुक्त समय पर श्रीमती राधा रानी के साथ पाणी ग्रहण स्वीकार करेंगे क्योंकि सभी दिव्य लक्षणों से युक्त है। ललित माधव का श्लोक है। तो राय कहे आगे कहो अंगेर विशेष श्री रूप कहे न किछु संक्षेप उद्देश्य। तो बहुत श्लोक बोलते जा रहे हैं और राय एक एक श्लोक सुनाते हैं। अच्छा और बोलिए बहुत अच्छा लग रहा है और बोलिए। तो एत सुनी राय कहे प्रभु र चरणे बोलते जा रहे हैं रूपे र कवित्व प्रशंसी सहस्त्र बदने। इसकी प्रशंसा साक्षात शेष भी करे तो कम पड़ेगा। कवि तो ना है ये अमृत तेरो धार, ये कविता नहीं है अमृत की धार है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर की कोई भी कविता हाथ से नहीं लिखी गई है और हृदय से लिखी गई है। हाथ तो केवल साधन है, अमृत उसमें छूता है। कवि तो ना है ये अमृत तेरा धार, नाटक लक्षण सब सिद्धांत तेरा सार। एक एक श्लोक सिद्धांत से भरा हुआ है। प्रेम परिपाटी ये अद्भुत वर्णन सुनिश्चित करने रहे आनंद घुलन, यह कान में प्रवेश करते ही आनंद नाचने लगता है। किम काव्यन्य कवेश कस्य किम कांडेन धनुष्मतः परस्य हृदय लग्नम न घोड़यति यक्षिरः। बोलते हैं सिद्धांत कि अगर धनुर्धर का बाण और कविता की कवि की कविता अगर हृदय को झुमा नहीं दिया तो चकरा नहीं दिया तो उस कवित्व का कोई दम नहीं है। कहते धनुर्धर के तीर किम काव्य न कवि तत्व की कांडे न धनुष्मत परस हृदय लग्नम न घोड़यति यक्षिरः। एकदम दिमाग को नचा न दे, बाण लगे और व्यक्ति छटपटाने लगे तो माँ वो है वीर, ऐसा बाण मारे कि एकदम छटपटाने लगे, नाचने लगे, घोड़ा छा जाए। और भी काव्य की कविता कान के माध्यम से हृदय में जाओ व्यक्ति नाच उठे, वाह वाह क्या गाना है। आज के कवि सम्मेलन में कविता में कोई दम नहीं लेकिन एक वाक्य चालू करता है तो ऑडियंस बोले या ना बोले साथ में रहने वाले कवि कहते वाह वाह क्या गाना है, कमाल हो गया। तो हम लोगों के साथ भी कुछ कवियों का संपर्क है, कई बार कवि सम्मेलन बनारस में सुने हैं। हमारे साथ एक मनमोह जी दिए हैं कवि भोजपुरी के प्रसिद्ध। तो मैं उनसे पूछा कि सचमुच आप लोगों को आनंद आता है, कभी कभी तो फालतू वाह वाह करते हैं। कहते हैं कि कवियों की यह दोष है और वाह वाह ही सुने बिना आगे बढ़ेगा वो दिखता है कौन कह रहा। तो ऑडियंस को तो समझ में आया नहीं आया, हम लोग उत्साह बनाने के लिए आपस में ही वाह वाह कर लेते हैं, वाह वाह क्या कहना है क्या कहना है। तो इसीलिए महाप्रभु कहते हैं यह सुंदरी कविता मुझे नहीं चाहिए, न धनम न जन्म न सुंदरी कविता वा जगदीश काम है। तो एक टीका का कुछ लोग तो सुंदरी अलग अर्थ करते हैं, कविता अलग है, लेकिन एक अर्थ है कि कविता स्त्रीलिंग है उसकी विशेषण में सुंदरी लगाए हैं। अगर यह श्लोक सुंदरी को अलग कर दिया जाए तो स्त्रियों के पक्ष में क्या अर्थ होगा। अगर कोई इस श्लोक को स्त्री बोलती है न धनम न जन्म न कविता सुंदरी कविता वा जगदीश कामये, तो वह कहे कि हे प्रभु मुझको धन नहीं चाहिए, जन नहीं चाहिए, सुंदरी नहीं चाहिए। सुंदरी कविता की विशेषता है, माने खूब बाही वाली कविता नहीं चाहिए। वाह क्या कमाल कर दिया, इतना विद्वता, इतना बढ़िया भाषण बोल रहा है, इतना बढ़िया प्रवचन कर रहा है, इतनी बढ़िया श्लोक पढ़ रहा है, प्रशंसा मुझे नहीं चाहिए। मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे तुकी त्वयि, तो चाहिए तुमको क्या, धन भी नहीं चाहिए और तुम्हारा सपोर्टर नहीं चाहिए, शिष्य नहीं चाहिए, वाहवाही करने वाला नहीं चाहिए, विद्वता नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए। तो मेरा जन्म जन्म वैकुंठ और मोक्ष भी नहीं चाहिए, बार बार जन्म हो और हर बार आप के बिना हेतु की भक्ति करें। कवि तो ना है ये अमृत धार, नाटक लक्षण सब सिद्धांत रसार। तो कहते हैं कि यह चित्त कर्ण को घृणित कर देने वाला है। तुम्हार शक्ति बिना जीवे नहीं यही बाड़ी, हे महाप्रभु आपके कृपा के बिना ऐसी कविता नहीं हो सकती। तुम ही शक्ति दिया कहे हो जेना अनुमानी। प्रभु कहे प्रयागे इहा हईल मिलन, इहार गुणे इहा के अमार तुष्ट हईल मन। मैं प्रयाग में इसके व्यवहार से संतुष्ट हुआ और इसको दिया, मैं शक्ति दिया, स्वीकार कर रहे हैं। तो कहते हैं कि इस प्रकार आप लोग भी इसको आशीर्वाद दीजिए, यह भक्ति रस शास्त्र को लिखे। और फिर कहते हैं इहार जे ज्येष्ठ भ्राता नाम सनातन। महाप्रभु कहते हैं इसके बड़ा भाई जो है उसका नाम सनातन है। अब पृथ्वी ते बिग वर नहीं तार सम, अभी तो आप छोटे को देख रहे हो, और बड़ा भाई तो पृथ्वी में कोई उसके समान विद्वान है ही नहीं। पृथ्वी ते विज्ञवर नाही तार सम। और वास्तव में जब काशी में 2 महीना तक उनके साथ महाप्रभु शिक्षा देते रहे, तो युग धर्म का वर्णन जब कर रहे थे, तो सारे युग में सब युग में भगवान का रूप होगा, ये मंत्र होगा, त्रेता में द्वापर में कलयुग में नाम कीर्तन से लोग आराधना करते हैं, उसका रूप क्या होता है, कृष्ण वर्णन तुषा कृष्ण सांगो पांगात पार्षदम, सब महाप्रभु बोले। विज्ञ जन पहचान लेते हैं तो कहते हैं कि प्रभु कलयुग के अवतार का नाम क्या होता है, कैसे पहचाना जाए। तो कहते हैं कि सुमेध स, विद्वान लोग पहचान लेते हैं, सुमेधा लोग जजंती ही सुमेध सब जग संकीर्ण संकीर्तनम प्राय ही जजंती ही सुमेध स। कीर्तन यज्ञ के द्वारा विद्वान लोग भजन करते हैं, पहचान लेते हैं। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं प्रभु इधर उधर नहीं, एकदम एग्जैक्ट नाम क्या है जो नाम लेकर आए, उसको बतलाने में क्या दिक्कत है। कहते हैं और लक्षण से जैसे और अवतार को पहचानते हैं वैसे कलयुग के अवतार को पहचान लो। तो कहते हैं कि हाँ, लेकिन जब बतला ही रहे हैं तो छिपा क्यों रहे हैं, कहिए ना। तो कहते हैं देखो सनातन, ज्यादा चलाखी मत रखो, तुम बुद्धि में बृहस्पति हो और मुझको छका रहे हो, तुम नहीं समझ रहे हो। अवतार ना कहे आमी अवतार कहीं थी, अब नाम तो नहीं रखे लेकिन अवतार नहीं कहता है कि मैं ही हूँ। तुम क्या कहना चाहते हो, मैं कह दू मैं ही हूँ। अवतार ना कहे आमी अवतार, देखो विज्ञ हो मत मुझको छकाओ, तुम बुद्धि में बृहस्पति हो, ऐसे महाप्रभु को कहना पड़ा। तो कहते हैं कि पृथ्वी ते विज्ञ वर नाही तार सम, तुम्हार जैसे विषय त्याग। राय रामानंद के मन में भी था कि हम कुछ छोड़कर आए हैं, कमिश्नर थे दक्षिण भारत में महाराज प्रताप रुद्र के, तो कमिश्नर पद छोड़कर आए हैं, एक बहुत बड़ा पद। तो महाप्रभु के हर आचरण में कुछ शिक्षाएं हैं। तो अब कहने आपसे 20 है यह कहना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं आप जैसे विषय त्याग किया है, आप कमिश्नर पद छोड़े हैं और नवाब हुसैन शाह का प्राइम मिनिस्टर पद छोड़ा है, प्राइम मिनिस्टर का पद छोड़ा है और चीफ जज था। तो तुम्हारे जैसे विषय त्याग तैसे तार रीति, और दैन्य वैराग पांडित्य तहा ते स्थिति। वह विषय त्याग आप जैसा किया है और दैन्य में वैराग्य में पांडित्य में विद्वान है लेकिन दैन्य व्यवहार है। तो मैं इन दोनों भाइयों को वृंदावन पठाया, शक्ति संचारित किया, भक्ति शास्त्र करने लिखने के लिए आज्ञा दिया। तो राय कहे ईश्वर तुम्हें जे चाह करी थे, काष्ठे र पुतली तुम्हें पार नचाई थे। प्रभु काष्ठ की पुतली स्वतंत्र नहीं नाचती है, उसके साथ धागा होता है पतला, और वो कलाकार हाथ से घुमाता है पुतली नाचती है, देखने वाला समझता वही नाच रही है। तो आप जिसके मुख से जिसके द्वारा जो करा लीजिए वो कर लेगा। मोरे मुख ये सब करीला प्रचारण से ही रस देखिए, यहाँ लिखन है। आप जो कुछ मुझसे बोलवाए मैं देख रहा हूँ कि रूप वही लिख रहा है। तो इस प्रकार महाप्रभु रूप गोस्वामी को आलिंगन किए, अद्वैताचार्य नित्यानंद आदि भक्तों की कृपा दिलवाए, सारे पूरी में उनके गुणों को सब लोग गा रहे हैं। सभी लोग हरदास ठाकुर और रूप गोस्वामी कालिंगन करके जाते हैं, तब कहते हैं हरदास ठाकुर रूप कालिंगन किए उन लोगों के जाने के बाद, हरदास जी कहते तुम्हार भागेर नाही सीमा, जे सब वर्णिला यहाँ किए जाने महिमा रूप, तुम मेरे साथ इतने दिनों से हो लेकिन आज तुम्हारी महिमा समझा पाऊं। रे श्री रूप कहना आमी किछु ही ना जानी, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, जे महाप्रभु काम से ही कही बारी, मैं तो यंत्र हूँ। हृदय जस्य प्रेरणया प्रवृत्तो हम बराक रूपोपि तस्य हरे पद कमलम वंदे चैतन्य देवस्य। हरिदास रूप बात कर रहे कि जो हृदय में हमको प्रेरणा कराते हैं वही मैं गीतता हूँ, मैं तो यंत्र हूँ, बजाने वाले तो वही है। तो इस प्रकार चार महीना वहां रहे, पूरे भक्तगण जब जाने लगे विदा होने लगे तो गौड़ीय भक्त लोग अब लौट रहे हैं रथ यात्रा के बाद। देखिए गृहस्थ लोग आते थे आषाढ़ में आते थे, कार्तिक में जाते थे, शयनी एकादशी से पहले आ जाते थे रथ यात्रा में। रथ यात्रा द्वितीया को होता है और एकादशी शयन एकादशी को, शयन एकादशी इसके बाद उठायनी एकादशी के बाद जाते थे चार महीना रहकर। तो जब जाने लगे तो सब लोग रूप गोस्वामी को आशीर्वाद दिए और रूप गोस्वामी बहुत प्रेम से वहां रह रहे हैं, डोल यात्रा देखे। तो महाप्रभु एक दिन कहने लगे कि अब आपको वृंदावन जाना चाहिए, वृंदावन जाई तुम ही रही हो वृंदावन, आप जाओ फिर कब मिलेंगे प्रभु। कहते हैं एक बार यहाँ पठाई वो सनातन, आप जाइए और सनातन को भेज देना एक बार मुझसे मिले। ब्रजे जाई रस शास्त्र करिय निरूपण, लुप्त तीर्थे सब तहां करिय प्रचरण। आप ग्रंथ लिखिएगा और लुप्त तीर्थ जो लीला स्थलियां छिपी हुई है उसका प्रचार कीजिए। कृष्ण सेवा रस भक्ति करिय प्रचार, आमी हम देखिते तहा आईबू एक बार, आईमू एक बार। कहते मैं एक बार जरूर आऊंगा आप लोगों का काम देखने के लिए, ठीक है आप जाओ आप ग्रंथ लिखो तीर्थ का उद्धार करो, एक बार मैं आऊंगा। तब प्रश्न उठता है कि सचमुच महाप्रभु आए? हाँ आए। किस रूप में? सारे भक्त लोग अपना भूमिका तैयार कर लिए, ग्रंथ लिख लिए, मंदिर भी कई बन गया, तो महाप्रभु आए कि नहीं? तो आए राधा नमन जी के रूप में, मधु पंडित के यहाँ शालिग्राम शिला स्वयं राधा कृष्ण एक साथ मिलकर, राधा जी नहीं है लेकिन फिर भी उनको राधा रमण कहा जाता है साथ में, तो राधा रमण अकेला विग्रह है। तो महाप्रभु उनको स्वप्न दिए कि मैं उपस्थित हूँ, तुम लोग मुझे पहचान नहीं रहे हो और रोज मन बनाते हो आते नहीं आते नहीं आते नहीं, और राधा रमण के रूप में कौन है? मैं ही हूँ। तो इस प्रकार भक्त लोग संतोष किए। कृष्ण सेवा भक्ति रस करी है प्रचार, आमी है देखीते तहां आईमू एक बार। ये तो बोली प्रभु तारे कैला आलिंगन, रूप गोसाई सिरे धरे प्रभु र चरण। पकड़ का आलिंगन कर लेते थे छाती से, लेकिन इतना सा संतोष रूप गोस्वामी को नहीं हो रहा है, तो दंडवत करते हैं प्रणाम और उनका चरण अपने सिर पर रखते हैं। प्रभु र भक्त गौर पासे विदाय लैला, पुनरअपि गौर पथे वृंदावन आईला। फिर ये डायरेक्ट नहीं गए, फिर अनुपम अब छोटा भतीजा 6 साल का था उससे मिलते हुए फिर गए। पुनरअपि गौर पथे वृंदावन आईला, वृंदावन चले गए। यही तो कहिलाम पुनः रूपे र मिलन, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि रूप गोस्वामी के मिलन लीला को इस प्रकार में कहा, यहा जेई सुने पाए चैतन्य चरण। आप लोग ऐसा मत सोचिए कि हम फोकट में 1.5 घंटा से बैठे हैं, अगर इसको प्रेम से सुनेंगे तो निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु का चरण मिलेगा। सुने पाए चैतन्य चरण, श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चरिता मृत कहे कृष्णदास। श्रीपाद रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों की आशा रखते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरिता मृत कह रहे हैं। तो इस प्रकार रूप गोस्वामी के 3 बार की मिलन कथा को कही गई। प्रथम बार रामकेली में बंगाल में महाप्रभु जाकर मिले, और फिर दूसरी बार प्रयाग में
और तीसरे बार पूरी में। बस तीन मीटिंग के बाद फिर मिलने का अवसर नहीं मिला। और चेतन महाप्रभु के मनोभीष्ट को जो समझ कर पृथ्वी पर दिए वह अमूल्य धरोहर है। यह है रूप गोस्वामी का मिलन। आप कल समय से आइए, सनातन गोस्वामी के साथ महाप्रभु के मिलन की कथा होगी। हरे कृष्णा।